इसी बात से आस्तिक और ज्यादा नाराज होते हुए उस ड्राइवर के घर पहुंचने से पहले ही उसे नौकरी से निकाल चुका था। आस्तिक बेचैनी से अपने कमरे में इधर से उधर टहल रहा था। उसे पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी। वो अरुणिमा को अपने सामने चाहता था, उसका मासूम चेहरा वो अपने हाथों में लेना चाहता था, वो अरुणिमा के माथे को प्यार से चूमना चाहता था। पता नहीं उसका मन क्यों इतना घबरा रहा था। तभी उसके मन के एक कोने से उसके कानों में एक आवाज आती है, बेवकूफ इंसान, तुम्हें उस लड़की से प्यार हो गया है और अब वो तुम्हारी जरूरत बन गई है। इससे पहले कि आस्तिक अपने ही इस सवाल को समझ पाता, दरवाजा खुलता है और अरुणिमा अंदर आती है। अरुणिमा को देखकर आस्तिक का बेचैन मन अचानक से शांत हो जाता है। अरुणिमा उदास चेहरे के साथ कमरे में दाखिल होती है। आस्तिक तेज कदमों के साथ अरुणिमा की तरफ बढ़ता है और उसे एक झटके में अपनी बाहों में भरकर कस के गले लगा लेता है। आस्तिक बेचैन होता हुआ अरुणिमा से कहता है, तुम कहाँ थी अब तक? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ? तुमने इतनी देर क्यों लगा दी आने में? अरुणिमा का मन वैसे ही पहले से बहुत ज्यादा निराश था। अब उसे आस्तिक की बातें ही समझ में नहीं आ रही थी कि अचानक से आस्तिक ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। उसे डर था कि आस्तिक किसी बात से नाराज तो नहीं हो गया और अचानक से उसे मारने तो नहीं लगेगा। पर दो मिनट तक जब आस्तिक ने उसे यूं ही गले लगाए रखा तो अरुणिमा को विश्वास हो गया कि नहीं, आस्तिक इस वक्त नाराज नहीं है। वो धीरे से आस्तिक से अलग होते हुए उसकी आंखों में देखकर कहती है, मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ, थक गई हूँ। आस्तिक ने अरुणिमा के दोनों गालों को अपने हाथों में भरते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, चलो मैं करवा देता हूँ। अरुणिमा एक पल के लिए चौंक गई थी। उसे लगा आस्तिक उसे सीधे बेड पर ले जाएगा और फिर उसके साथ इंटिमेट होगा, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही सीन चल रहा था। आस्तिक ने अरुणिमा को धीरे से दुल्हन की तरह अपनी गोद में उठा लिया, जैसे वो कोई छोटी बच्ची है। अरुणिमा ने जल्दी से आस्तिक के गले में अपनी बाहें डाल दी, पर उसकी हैरत भरी निगाहें अभी भी आस्तिक के ऊपर ही थीं। आस्तिक मुस्कुराते हुए अरुणिमा को धीमे कदमों से बाथरूम की तरफ ले जाता है। आज तो आस्तिक अपने हर एक अंदाज से अरुणिमा को हैरत कर रहा था और आस्तिक के इस तरीके के स्वीट बिहेवियर को देखकर अरुणिमा ये तक भूल गई थी कि शारदा जी ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था। क्लोजेट के अंदर अरुणिमा सिर्फ ब्लाउज और शॉपर में खड़ी थी। आस्तिक एक साड़ी लेकर आता है और धीरे से उसका एक कोना निकालते हुए अरुणिमा की कमर पर टक करता है। जैसे जैसे अरुणिमा की साड़ी बंध रही थी, वैसे वैसे अरुणिमा हैरानी से आस्तिक को देख रही थी। आस्तिक अरुणिमा के सामने खड़ा हो जाता है और धीरे से उसकी साड़ी की प्लेट बनाने लगता है। अब तो अरुणिमा से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने आस्तिक को देखते हुए आखिरकार पूछ ही लिया, राजा साहब, एक बात पूछूं मैं आपसे? आस्तिक ने बस इतना ही कहा तो अरुणिमा उसे देखते हुए कहती है, आपको साड़ी बांधने कैसे आती है? अरुणिमा के सवाल पर आस्तिक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और अब तक अरुणिमा की प्लेट भी बन चुकी थी। आस्तिक अरुणिमा को देखते हुए धीरे से उसकी कमर के पास झुक जाता है। वो धीरे से उसकी शॉपर को हल्का सा खिसकाते हुए उसकी प्लेट को साड़ी में टक करता है। अरुणिमा की पूरी बॉडी सिहर रही थी और आस्तिक ने धीरे से आगे बढ़कर अरुणिमा की नाभि के पास चूम लिया। अरुणिमा की पूरी बॉडी कांपने लगी थी और उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। आस्तिक खड़ा होता है और अरुणिमा को देखने लगता है, जिसकी आंखें बंद थी। आस्तिक अरुणिमा को अपनी गोद में उठा लेता है और धीरे धीरे उसे कमरे में लेकर आने लगता है। अरुणिमा डर जाती है। आज पूरे दिन की थकावट के बाद उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि बिस्तर पर आस्तिक का सामना कर सके। आस्तिक अरुणिमा को अपनी जगह पर लेटाता है और दूसरी तरफ जाकर खुद तकिए पर सर रखकर लेट जाता है। वो धीरे से अरुणिमा की बाजू को पकड़कर उसे अपने करीब लाता है और उसका सर अपने सीने पर रख लेता है। अरुणिमा हैरान रह जाती है। आस्तिक ने कुछ भी नहीं किया, बल्कि वो तो अपनी आंखें बंद करके पड़ा हुआ था और धीरे धीरे अरुणिमा के सर पर थपकी दे रहा था, जिससे कि वो सो जाए। अरुणिमा धीरे से आस्तिक का चेहरा देखते हुए कहती है, आस्तिक, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? अचानक से आस्तिक अपनी आंखें खोलता है और अरुणिमा को देखने लगता है। उसकी आंखों में इस समय अजीब सी बेचैनी थी। अरुणिमा ने पहली बार आस्तिक का नाम लिया था। उसे राजा साहब कहकर नहीं बुलाया था, बल्कि उसके नाम से बुलाया था। अरुणिमा के मुंह से अपना नाम सुनकर आस्तिक के दिल में एक खुशी का एहसास होता है और वो मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ कहो ना, क्या चाहिए? अरुणिमा सोच रही थी कहीं आस्तिक नाराज ना हो जाए, लेकिन उसे ये बात कहनी तो थी ही ना। उसने कहा, क्या मैं मिश्री का एडमिशन पास के सरकारी स्कूल में करवा सकती हूँ? मना मत कीजिएगा, उसके भविष्य का सवाल है, उसका एक साल बर्बाद हो गया है। आस्तिक ने मिश्री की स्कूल पढ़ने के लिए हाँ कह दिया था, जिसे जानने के बाद अरुणिमा खुश हो जाती है
और मुस्कुराते हुए आस्तिक को देखकर कहती है, धन्यवाद राजा साहब। आस्तिक कुछ नहीं बोला, लेकिन अरुणिमा के दिमाग में अभी भी सिर्फ शारदा जी की बातें ही चल रही थी। आस्तिक सो चुका था, लेकिन अरुणिमा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। अपनी माँ के बारे में सोच सोच कर उसके सर में और दर्द हुए जा रहा था। वो औरत जिसने उसे पाल कोस कर बड़ा किया और जिसे उसने आज देखा था, वो दोनों एक दूसरे से बहुत अलग थी। अरुणिमा करवट लेकर पलटती है और अपने मन में सोचते हुए कहती है, माँ आपने मुझे कैसी उलझन में डाल दिया है, अब मैं इस पहेली को कैसे सुलझाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुबह का वक्त, अरुणिमा का कमरा। अरुणिमा अभी अभी नहाकर वापस कमरे में आई थी। उसने एक पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी जो उसके बदन पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके कमर तक के लंबे और लहराते बाल इस समय गीले थे, जिसे वो तौलिया से पोंछ रही थी। अरुणिमा बालों को पोंछते हुए शीशे के सामने आती है और सबसे पहले अपने उन पुराने जख्मों पर मरहम लगाती है। चेहरे के आसपास के जितने भी पुराने निशान थे, उसने उसे फाउंडेशन से बखूबी छुपा लिया था। अब तक अरुणिमा को फाउंडेशन कैसे इस्तेमाल करना है, ये अच्छी तरह से समझ आ गया था। भले ही उसने कभी मेकअप के लिए इसका इस्तेमाल ना किया हो, लेकिन अपने दाग को छुपाने के लिए वो इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से करने लगी थी। हाथों पर लोशन लगाकर चेहरे पर उसने हल्का सा क्रीम लगाया। माथे पर एक येलो कलर की बिंदी लगाकर उसने अपने बालों का पार्टीशन किया और बीच में सिंदूर लगाने लगी। जैसे ही अरुणिमा अपनी मांग में सिंदूर भरती है, उसे एहसास होता है जैसे कि किसी की निगाहें उसके शरीर को भेद रही हैं। उसने शीशे के प्रतिबिंब से पीछे की तरफ देखा, जहां पर आस्तिक उसे शून्य भाव से देखे जा रहा था। अचानक से अरुणिमा घबरा गई। आस्तिक का चेहरा कभी कभी उसे समझ में नहीं आता था। आस्तिक बिस्तर से नीचे उतरता है और धीरे धीरे चलते हुए अरुणिमा के पास आता है। वो आईने में अरुणिमा के प्रतिबिंब को निहार रहा था। अरुणिमा जल्दी से खड़ी होती है और कंघी को वहीं ड्रेसिंग पर रखते हुए एक क्लचर उठाती है और अपने बालों को इकट्ठा करते हुए वो आस्तिक को देखकर कहती है, राजा साहब आप फ्रेश हो जाइए, मैं तब तक नाश्ता लगा रही हूँ। अरुणिमा दरवाजे की तरफ बढ़ी थी कि तभी उसके कानों में आस्तिक की आवाज आती है, अच्छी लग रही हो। अरुणिमा डर जाती है, अब तो आस्तिक की तारीफ भी उसे समझ नहीं आती थी। कहीं अगले ही पल वो फिर से मॉन्स्टर के रूप में ना आ जाए। उसने डरते हुए आस्तिक को देखा और जबरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हुए कहा, थैंक यू। आस्तिक और अरुणिमा एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन उन दोनों में से कोई कुछ कह नहीं रहा था। अरुणिमा के मन में तो बहुत कुछ था आस्तिक से पूछने के लिए, पर शायद आस्तिक का डर इतना हावी था कि वो कुछ पूछ ही नहीं पा रही थी।